तो नमस्कार, आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पातुकर, आज हम आपको श्रमिकपुर कार्यक्रम के तहत रूबरू कराने जा रहे कृष्णा पहाड़े जी से। नमस्कार पहाड़े जी।
नमस्कार जी सर।
पहाड़े जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कंपनियों में जो श्रमिक काम के लिए जाते हैं उन्हें कंपनी के माध्यम से क्या क्या सुविधा उपलब्ध की जाती है?
कंपनी की ओर से जो परमानेंट वर्कर है उनके लिए तो कंपनी की ओर से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे कंपनियों में नहीं है। दूसरी बात, उनके जाने आने के लिए बसेस की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो इंडस्ट्रियल एरिया के 20-25 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर दूर रहती है, वो महिलाएं किसी न किसी दूसरे साधनों से जाती है और जो कि अनसिक्योर है, तो कंपनी की ओर से उनको साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी बात, जो ठेका मजदूर लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश प्राप्त नहीं, या वो लोगों को जिस दिन वो अवकाश लेते उस दिन उनकी छुट्टी काटी जाती, तो सप्ताह में एक बार उनको अवकाश प्राप्त होना चाहिए। और जितने भी मजदूर लोग हैं विशेष तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में, उनको जो है उनके बच्चों के लिए फ्री शिक्षण होना चाहिए, जो कि नहीं है। बहुत सारी स्कूल जो है, जो कि भंसाली स्कूल है, एक रेमंड का भी स्कूल है, परंतु यहाँ पर वो एक व्यवसायिक तौर पर बिजनेस तौर पर उन्होंने स्कूलों को तो उन्होंने एक श्रमिक कुल के तौर पर उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, परंतु वो लोग श्रमिकों के बच्चों को भी फीस जो है वो वही देनी पड़ती है। लगभग मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कम होगी, हमारे बच्चे जब पढ़ते थे थोड़ी कम थी, लेकिन शायद आज जो है उनको कम से कम 80% तो फीस देने पड़ती होगी।
पहाड़ी जी, आपका
मतलब ये है कि
पहाड़ी जी, आपके कहने का ये मतलब है कि जिन कंपनियों के नाम से शालाएं संचालित है श्रमिकों के बच्चों के लिए, वहाँ पर उन्हें शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए?
बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की फीस नहीं होना चाहिए। कारण कि एक श्रमिक जो है जिसकी आय बहुत कम होती है, और अगर से वो केवल अपने बच्चों को पढ़ाने में ही सारा पैसा व्यय कर देगा तो अपने लिए 2 रुपए भी नहीं बचा सकता। आज जितने भी श्रमिक हैं वो किराए के मकानों में रहते हैं, ज्यादातर किराए के मकानों में रहते हैं। रेमंड जैसे बड़े संस्थान जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं उन्होंने ही मकान अपने बनाए हुए, बाकी जितने मजदूर जो लोग है वो लोग बाहर दूसरे के यहाँ किराए से रहते हैं।
पहाड़ी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज एरिया बोरगांव रोधिखेड़ा क्षेत्र में ऐसी कितनी कंपनियां अभी वर्तमान में कार्यरत है और कितने मजदूर काम कर रहे होंगे?
हजारों की संख्या में है मजदूर।
यदि मान के चलो किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती तो यहाँ क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है?
स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर एक सरकारी अस्पताल है, बाकी गाँव में छोटे अस्पताल होंगे। रेमंड कंपनी में उनका प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, जैसे भंसाली में भी प्राथमिक उपचार केंद्र है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत में किसी भी प्रकार की कोई भी उनके पास में सुविधा नहीं है।
तो क्या यहाँ पर सर्वाधिक इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल होने की आवश्यकता है?
बिल्कुल, इंडस्ट्रियल की तौर से जो AKBN है, ठीक है, इनकी ओर से एक बड़ा अस्पताल होना बहुत जरूरी है, जो कि केवल मजदूरों के जो है बच्चों को या मजदूर लोगों को, मजदूर के परिवारों को वहां पर फ्री में इलाज मिले, जैसा कि कोयलांचलों में होता है ना, ठीक है, उनके अस्पताल होते हैं। उसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में अस्पताल की व्यवस्था होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, स्कूल जो है केंद्रीय स्कूल इस क्षेत्र में होना चाहिए, जो कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण वो दे सके।
पहाड़े जी, इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने बात शिक्षा और स्वास्थ्य पर की कि मजदूरों के लिए ये चीजें होनी चाहिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मजदूरों के लिए कौन कौन से बीमे कंपनियों में लागू है?
मजदूरों के लिए जो है मेडिकल क्लेम होता है, ठीक है, उसमें मेडिक्लेम में ऐसा होता है कि कुछ परसेंट जो है कंपनी भरती है, कुछ परसेंट वर्कर होता है, वर्कर भरता है, तो ये प्राइवेट जो बीमा कंपनी है ये कराती है। और ESI की सुविधा होती है जो कि वो गवर्नमेंट की ओर से है, और इसमें मजदूर के जो परिवार है और मजदूर है ये सिक्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 99% कंपनियों में ये सुविधा नहीं है। ये यहाँ पर कोई भी अगर से विपत्ति आती है या कोई भी मजदूर बीमार पड़ता है या कोई बीमारी से वो ग्रसित होता है, कंपनी कोई भी अपने ऊपर क्लेम नहीं लेती है, बाकी मजदूर ही कुछ आपस में पैसा इकट्ठा करके उसको वो देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है।
पहले जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी इन मुद्दों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि या मजदूर संगठनों ने कभी आवाज उठाई, और उठाई तो क्या आज तक इस ओर किसी प्रकार का काम हो पाया?
मजदूर संगठनों ने इस बात पर आवाज उठाई, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मजदूर संगठन पहले जैसे मजबूत थे अब नहीं, वो भी कंपनी मैनेजमेंट के समर्थन में ही जाते हैं और वो कमजोर हो गए हैं, उतने मजदूर संगठन जो है मजबूत नहीं, इसके कारण जो है वो आवाज तो उठाते हैं परंतु उसकी उनको दबा दी जाती
पहाड़ी जी, आपने किस कंपनी में कितने वर्ष तक काम किया?
है। मैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड में लगभग 22 साल काम किया।
और अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं?
वर्तमान में मैं कुछ नहीं करता हूँ अभी, मेरे दोस्त का एक बिजनेस है छोटा सा, मैं उसमें काम कर।
पहाड़ी जी, आज इस अवसर पर हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपके बेटे ने MBBS की तैयारी की और उसका चयन इंदौर के लिए हुआ। इसके लिए छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। कि हमें ज्ञात है कि आप एक छिंदवाड़ा जिले के एक ऐसे ग्राम से, गरीब परिवार से उठकर कंपनी की ओर गए। आपने 22 साल काम किया, कंपनी छोड़े, उसके बावजूद आपने अपने बच्चों की शिक्षा नहीं छोड़ी और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया, जो आज आपके बच्चे एक अच्छे मुकाम तक पहुंच रहे। इसके लिए छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता है और बहुत बहुत बधाई भी देता है। और हम आपसे चाहते कि आप छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से श्रमिकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस अवसर पर?
धन्यवाद दिनकर जी। मैं श्रमिकों को, मैं एक मजदूर होने के नाते मैं आज भी अपने आप को एक मजदूर के तौर पर पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 22 साल उनके बीच में काम किया। उनकी बहुत सारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि मजदूर को डरा के रखा जाता है, वो डरे हुए, उनके पास में कोई ऐसे संगठन नहीं, मजबूत संगठन नहीं, और व्यावसायिक जो लोग हैं वो उनका शोषण करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों में डर की भावना होने के कारण वो लोग संगठित नहीं, और संगठित नहीं होने के कारण उनका शोषण है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मजदूरों का एक ऐसा मजबूत संगठन हो पूरे पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का, ठीक है, और उसकी उसमें ऐसे लोग हो जो मजदूरों की समस्या को उठाए, क्योंकि आजकल जितने भी नेता लोग मजदूरों के हक के लिए खड़े तो होते हैं परंतु वो अपना ही जो है झोला भर के जाते, ये बहुत बार हुआ है। कई नेता लोग आए और कई नेता लोग गए परंतु मजदूर की किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ। मजदूरों में से ही ऐसे लोग इकट्ठा होने चाहिए जो लोग उनकी समस्या को मूलतः जानते हैं और उनमें ईमानदारी होनी।
बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़े जी कि आपने अपना समय निकालकर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी को दिया। और श्रमिक पूल कार्यक्रम जो कि खास श्रमिकों के लिए ग्राम वाणी के द्वारा संचालित है, इसमें अपनी राय साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दिनकर।